दिन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन हवेली में जैसे हर सुबह एक नया दर्द लेकर आती थी। अदिति की तस्वीर अब ड्राइंग रूम में लगी थी। उस तस्वीर के सामने रोज ताजे फूल रखे जाते। रत्ना देवी सुबह उठते ही वहां बैठ जाती। सुषमा देवी की आंखें अब भी जरा जरा सी बात पर भर आती थीं, और आर्यन, वो अभी भी खुद को संभाल नहीं पा रहा था। दुनिया चल रही थी, लोग उससे बात कर रहे थे, उसे समझा रहे थे, लेकिन उसके भीतर जैसे सब कुछ खत्म हो चुका था। उधर विश्वनाथ भी अपने अंदर एक अलग लड़ाई लड़ रहा था। पिछले कुछ दिनों से उसका दिमाग उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। जब भी वो शामली और आर्यन को एक साथ देखता, उसके मन में वही पुराने दृश्य घूमने लगते। वो खुद को बार बार समझाता, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बेकार सोच रहा हूं, शामली ऐसी नहीं है। लेकिन अगले ही पल वही शक फिर सिर उठाने लगता। उसे खुद पर गुस्सा आने लगा था, क्योंकि वो जानता था कि अभी सबसे ज्यादा दर्द आर्यन झेल रहा है, और ऐसे समय में उसे अपने बेटे का सहारा बनना चाहिए था, ना कि अपने मन के अंधेरों में भटकना चाहिए था। उस रात वो काफी देर तक अपने कमरे में बैठा रहा, फिर अचानक उठा, सीधे आर्यन के कमरे की तरफ चला गया। कमरे का दरवाजा आधा खुला था, अंदर आर्यन खिड़की के पास बैठा था। हाथ में अदिति की तस्वीर थी, चेहरे पर वही खालीपन। विश्वनाथ कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, उसका दिल भर आया। उसे अचानक याद आया, जब आर्यन छोटा था और किसी बात पर रो पड़ता था तो भागकर उसकी गोद में आ जाता था। आज वही बच्चा फिर टूट गया था, बस फर्क इतना था कि अब वो बड़ा हो चुका था। विश्वनाथ धीरे से उसके पास गया। आर्यन ने सिर उठाकर देखा, दोनों की नजरें मिली। कुछ पल कोई कुछ नहीं बोला, फिर विश्वनाथ ने बिना कुछ कहे उसे अपनी तरफ खींच लिया और सीने से लगा लिया, एकदम मजबूती से। मैं हूं तेरे साथ बेटा, उसकी भारी आवाज कमरे में गूंज गई। सब ठीक हो जाएगा, बस इतना ही कहा था उसने, लेकिन शायद यही शब्द आर्यन को सबसे ज्यादा चाहिए थे। अगले ही पल आर्यन जैसे पूरी तरह टूट गया। उसने भी पिता को कसकर पकड़ लिया। इतने दिनों से जो आंसू अंदर दबे हुए थे वे अचानक बाहर निकल पड़े। वो बच्चे की तरह रोने लगा, पापा, उसकी आवाज कांप रही थी, मैं उसे नहीं बचा पाया। विश्वनाथ की अपनी आंखें भी भर आईं। उसने उसके सिर पर हाथ फेरा, किस्मत के आगे कोई नहीं जीत सकता बेटा, खुद को दोष मत दे, तूने उसे बहुत प्यार किया था, ये बात सबसे ज्यादा मायने रखती है। कई मिनट तक दोनों वैसे ही खड़े रहे, एक पटा और एक टूटा हुआ बेटा। दरवाजे के पास खड़ी शामली ये सब देख रही थी, उसकी आंखें भी नम हो गईं। वो पिछले कुछ दिनों से विश्वनाथ के व्यवहार में बदलाव महसूस कर रही थी। उसे कई बार लगा था कि शायद उनके बीच कोई अनकही दूरी आ गई है, शायद आर्यन और उसके पुराने रिश्ते की वजह से, शायद कुछ गलतफहमियों की वजह से, और सच कहें तो उसे डर भी था। उसे लगा था कि शायद विश्वनाथ के मन में कहीं ना कहीं कोई टीस होगी, कोई शिकायत होगी, लेकिन इस वक्त जो उसने देखा, उसने उसके मन की सारी धारणाएं बदल दीं। एक आदमी जो खुद अंदर से परेशान था, जो शायद अपने ही मन से लड़ रहा था, लेकिन फिर भी अपने बेटे के दर्द के सामने अपनी सारी भावनाएं भूल गया, सिर्फ पिता बनकर खड़ा रहा। शामली की आंखों में विश्वनाथ के लिए सम्मान पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया। उसने मन ही मन सोचा, मैं इन्हें शायद समझ ही नहीं पाई, ये इंसान अपने दर्द से ऊपर उठकर भी दूसरों का सहारा बन सकता है। उसकी आंखें भर आईं और पहली बार उसे महसूस हुआ कि विश्वनाथ जितना बाहर से कठोर दिखता है, भीतर से उतना ही बड़ा दिल रखता है। दिन गुजरते रहे, एक सप्ताह, फिर दूसरा सप्ताह, फिर तीसरा, लेकिन आर्यन का दर्द कम नहीं हुआ। वो ऑफिस जाना छोड़ चुका था, फोन उठाना छोड़ चुका था, दोस्तों से मिलना छोड़ चुका था। उसकी पूरी दुनिया जैसे अदिति के साथ चली गई थी। कई बार वो रात के 2-2 बजे तक जागता रहता, कभी उसकी तस्वीरें देखता, कभी पुराने मैसेज, कभी वीडियो, और फिर घंटों रोता रहता। हवेली में सब उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे। रत्ना देवी हर सुबह उसके लिए खाना लेकर आती, सुषमा देवी पूजा करवाती, शामली घंटों उसके साथ बैठती, कभी कोई बात नहीं करती, बस साथ बैठी रहती ताकि उसे अकेलापन महसूस ना हो। और विश्वनाथ, वो शायद सबसे ज्यादा कोशिश कर रहा था। वो रोज किसी न किसी बहाने आर्यन के पास जाता, उसे बाहर चलने को कहता, पुरानी बातें याद दिलाता, कभी बिजनेस की फाइलें लेकर बैठ जाता, कभी जबरदस्ती चाय पिलाता, लेकिन हर बार आर्यन की आंखों में वही खालीपन दिखाई देता, क्योंकि सच यही था, दुनिया का कोई भी इंसान उस जगह को नहीं भर सकता था जो अदिति छोड़ गई थी। वो सिर्फ उसकी पत्नी नहीं थी, उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, उसकी आदत थी, उसकी मुस्कान थी, उसकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। और जब कोई इंसान आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बल्कि आपकी जिंदगी बन जाता है, तो उसके जाने के बाद सिर्फ एक व्यक्ति नहीं जाता, बहुत कुछ साथ ले जाता है। एक शाम आर्यन अकेला कमरे में बैठा था। कमरा अब भी वैसा ही रखा गया था, अलमारी में उसके कपड़े, ड्रेसिंग टेबल पर उसकी चीजें, किताबें, परफ्यूम, सब कुछ, जैसे वो अभी दरवाजा खोलकर अंदर आ जाएगी। आर्यन ने धीरे से उसकी एक तस्वीर उठाई। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, आंखों में आंसू भर आए। तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई अदिति, उसकी टूटी हुई आवाज कमरे में गूंज गई। लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा, गहरा और दर्द भरा सन्नाटा। उस शाम के बाद धीरे धीरे एक बदलाव आने लगा। श्यामली ने कभी कोशिश नहीं की कि वो अदिति की जगह ले सके। वो जानती थी कि ये जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन अनजाने में ही वो आर्यन का भावनात्मक सहारा बनती जा रही थी। जब रात को आर्यन की नींद टूटती, वो अक्सर बरामदे में जाकर बैठ जाता। कई बार वहां उसे श्यामली पहले से बैठी मिलती। दोनों घंटों चुप रहते, ना कोई सवाल ना कोई समझाइश, बस साथ। कभी वो उसके लिए चाय बना लाती, कभी बिना कुछ कहे उसके पास बैठ जाती। और हैरानी की बात यह थी कि आर्यन को उसकी मौजूदगी से थोड़ा सुकून मिलने लगा था। एक दिन आर्यन अदिति की पुरानी डायरी पढ़ते पढ़ते फिर टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी श्यामली ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। दर्द को छुपाने से वो कम नहीं होता आर्यन, उसकी आवाज में अपनापन था। आर्यन ने पहली बार उसकी तरफ देखा। कई दिनों बाद उसके चेहरे पर दर्द के बीच एक हल्की सी नरमी दिखाई दी। शायद इसलिए नहीं कि उसका दुख कम हो गया था, बल्कि इसलिए कि अब उसके दुख को चुपचाप सुनने वाला कोई था। और कई बार जिंदगी में टूटे हुए इंसान को शब्दों से ज्यादा किसी के साथ की जरूरत होती है।